डेनियल की पुस्तक संख्या 133
भविष्यवाणी के ताने बाने का अनावरण 154,000 की मुहरबंदी के समय पर अंतर्दृष्टियां।
सभी भविष्यद्वक्ता आपस में सहमत हैं और वे जिस काल में रहे उसकी अपेक्षा वे सब संसार के अंत के विषय में अधिक स्पष्ट रूप से गवाही देते हैं। उनकी गवाही उस भविष्य सूचक काल में लागू होती है जो 144,000 की मुहरबंदी का समय है, क्योंकि उसी में हर दर्शन का प्रभाव घटित होता है। यशाया को अध्याय 6 में दर्शन में 144,000 की मुहरबंदी के समय के दौरान परम पवित्र स्थान में देखने की अनुमति दी गई, जहां उसने परमेश्वर की महिमा देखी। हमें पता है कि ये 11 सितंबर 2001 के बाद का है, क्योंकि उसने पद 3 में स्वर्गदूतों को ये कहते हुए सुना कि तब पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण थी।
जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए संदेश लेकर यशाया को भेजने ही वाले थे, तब उन्होंने पहले भविष्यद्वक्ता को दर्शन में पवित्र स्थान के भीतर स्थित परम पवित्र स्थान को देखने की अनुमति दी। अचानक मंदिर का फाटक और आंतरिक पर्दा मानो ऊपर उठा लिया गया या हटा दिया गया, और उसे भीतर उस परम पवित्र स्थान पर निहारने की अनुमति मिली, जहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता के पाँव भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसके सामने एक दर्शन उभरा। यहोवा एक ऊंचे और उन्नत सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी महिमा का घेर मंदिर को भर रहा था। सिंहासन के चारों ओर सेराफिन थे, जैसे महान राजा के चारों ओर पहरेदार होते हैं, और वे अपने चारों ओर की महिमा को प्रतिबिंबित कर रहे थे। जब उनके स्तुति गीत आराधना के गहरे स्वरों में गूंज उठे, तो फाटक के स्तंभ कांप उठे, मानो भूकंप से हिलाए गए हों। पाप से अप्रदूषित होंठों से इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की स्तुतियां उच्चरित की। वे पुकार उठे, पवित्र पवित्र है सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण है। देखें यशाया 6:8:8।
सिंहासन के चारों ओर के सेराफिम जब परमेश्वर की महिमा को निहारते हैं, तो वे श्रद्धापूर्ण विस्मय से इतने भर जाते हैं कि एक क्षण के लिए भी वे अपने आप को प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखते। उनकी स्तुति सेनाओं के प्रभु के लिए है। जब वे उस भविष्य की ओर देखते हैं जब सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी, तो विजयी गीत मधुर गान में एक से दूसरे तक गूंज उठता है, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु है। वे परमेश्वर की महिमा करने में पूर्णतः संतुष्ट हैं। उसकी उपस्थिति में ठहर कर उसकी प्रसन्न स्वीकृति की मुस्कान के तले उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उसकी छवि धारण करने में, उसकी आज्ञा का पालन करने में, उसकी आराधना करने में उनकी सर्वोच्च अभिलाषा पूरी हो जाती है। सुसमाचार के कार्यकर्ता 21।
यशाया के समान भविष्यद्वक्ता यहिजकेल को भी परम पवित्र स्थान के भीतर देखने की अनुमति दी गई थी। यहिजकेल का दर्शन अध्याय 1:1 में प्रारंभ हुआ।
30वें वर्ष में चौथे महीने की 5वीं तारीख को जब मैं चेबार नदी के किनारे निर्वासितों के बीच था, तब आकाश खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन देखे। यहिजकेल 1 उपाय से।
उसका दर्शन कई अध्यायों तक चलता रहता है और अध्याय 8 और 9 उसी दर्शन की ही कड़ी है, जिनमें 144,000 पर मुहर लगाए जाने का वर्णन है। हमें ये उसकी सावधानी पूर्वक दी गई गवाही से पता चलता है।
और ऐसा हुआ कि 6वें वर्ष 6वें महीने की 5वीं तारीख को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे, तब वहां मुझ पर प्रभु परमेश्वर का हाथ हुआ। तब मैंने देखा और क्या देखता हूँ, आग के समान एक आकृति। उसकी कटी से नीचे तक तो आग ही आग और उसकी कटी से ऊपर तक चमक के समान दीप्ति, जैसे कहरुवे का रंग। उसने हाथ के समान एक रूप बढ़ाया और मेरे सिर के बालों की एक लट पकड़ ली, और आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच उठा लिया और परमेश्वर के दर्शनों में मुझे यरूशलेम ले आया, उस भीतरी फाटक के द्वार तक जो उत्तर की ओर मुख किए था, जहाँ ईर्ष्या भड़काने वाली मूर्ति का आसन था। और देखो, वहाँ इज़राइल के परमेश्वर की महिमा थी, वैसा ही जैसा दर्शन मैंने मैदान में देखा था। यहिजकेल 8:1-4।
अध्याय 8 और 9 की वो दृष्टि जो उन दो वर्गों की पहचान करती है जो 144,000 की मुहरबंदी के दौरान विकसित होते हैं, उस दृष्टि के अनुसार थी जो यहेजकेल ने मैदान में देखी थी। मैदान में उसने जो दृष्टि देखी थी, उसकी पहचान अध्याय 3 में की गई है।
और वहां प्रभु का हाथ मुझ पर था, और उसने मुझसे कहा, उठ, मैदान में जा, और मैं वहां तुझसे बात करूंगा। तब मैं उठा और मैदान में गया, और देखो, वहां प्रभु की महिमा ठहरी हुई थी, वैसी ही महिमा जैसी मैंने केबार नदी के किनारे देखी थी। तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा। यहेजकेल 3:22-23।
यहेजकेल का मैदान का दर्शन उस महिमा जैसा था जिसे यहेजकेल ने केबार नदी के किनारे देखा था, और वही अध्याय 1:1 का दर्शन था। अध्याय 9 में मुहरबंदी का दर्शन और मैदान का दर्शन बस केबार नदी के दर्शन की ही निरंतरताएं थीं। ये परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा का दर्शन था 144,000 की मुहरबंदी के दौरान, ठीक वैसे ही जैसे यशाया का दर्शन था। यशाया का दर्शन मुहरबंदी के समय में दूतों को खड़ा करने के परमेश्वर के काम की पहचान कर रहा था, और अध्याय 2 और 3 में यहेजकेल उसी काम की पहचान यशाया से भी अधिक विस्तार से करता है, क्योंकि वो एक ऐसे दूत का चित्रण करता है जिसे लाओदीकियाए एडवेंटवाद तक एक संदेश पहुंचाना है, और जिन विद्रोही लोगों को छोड़ दिया जा रहा है उनके लिए वो जो संदेश लेकर जाने वाला है उसे समझने के लिए यहेजकेल को उस छोटी पुस्तक को खाने की आज्ञा दी जाती है जो स्वर्गदूत के हाथ में थी जब वो 11 सितंबर 2001 को उतरा।
फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, जो तुझे मिले उसे खा, इस पुस्तिका को खा और जाकर इज़राइल के घराने से बोल। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे वो पुस्तिका खाने को दी, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, अपने पेट को खाने दे और अपने उदर को इस पुस्तिका से भर जो मैं तुझे देता हूं। तब मैंने उसे खाया और वो मेरे मुंह में मधु के समान मीठा था। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, जा इज़राइल के घराने के पास जा और मेरे वचनों से उनसे बोल, क्योंकि तुझे ऐसी जाति के पास नहीं भेजा गया है जिसकी बोली अनजानी और भाषा कठिन हो, परंतु इज़राइल के घराने के पास, न बहुत से उन लोगों के पास जिनकी बोली अनजानी और भाषा कठिन हो, जिनके वचन तू समझ नहीं सकता। निश्चय ही यदि मैं तुझे उनके पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इज़राइल का घराना तेरी नहीं सुनेगा, क्योंकि वे मेरी भी नहीं सुनते, क्योंकि इज़राइल का सारा घराना ढीठ और कठोर हृदय है। देख, मैंने तेरा मुख उनके मुखों के विरुद्ध दृढ़ किया है और तेरी ललाट उनके ललाट के विरुद्ध दृढ़ की है। चकमक से भी अधिक कठोर हीरे के समान मैंने तेरी ललाट कर दी है। उनसे मत डर, न उनके चेहरों से घबरा, चाहे वे एक विद्रोही घराना ही क्यों न हो। यहेजकेल 3:1-9।
बाइबल में अन्य जाति एक परदेशी है और परदेशी अजनबी भाषा बोलता है। यहेजकेल को आधुनिक इज़राइल के घराने के पास भेजा गया जो मुहर लगाने के समय लाओदीकियाई सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया है, जिसे दरकिनार किया जा रहा है। 144,000 की मुहर लगाने के समय का संदेश परमेश्वर की कलीसिया के लिए है, जिसका सबसे पहले न्याय होता है और फिर शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी आवाज परमेश्वर की अन्य जाति भेड़ों के झुंड को बाबिल से बाहर बुलाती है। जब यशाया अध्याय 6 में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो लाओदीकियाई संदेश के साथ विद्रोही घराने के पास भेजे जाने की बुलाहट को स्वीकार करते हैं, तो उसे पूर्व सूचित किया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं समझते और सुनते हुए भी नहीं समझते। यशाया वही गुण दर्ज करता है जिसका हवाला यीशु ने यशाया अध्याय 6 से दिया, जब उसने उसी गुण को मसीह के समय कुतर्की यहूदियों पर लागू किया जिन्हें दरकिनार किया जा रहा था। अध्याय 12 में यहेजकेल लेख भी बिल्कुल उसी शब्दावली का उपयोग करता है, और इस प्रकार वो अध्याय 12 को 144,000 की मुहरबंदी के समय में विशेष रूप से रखता है।
फिर यहोवा का वचन मुझसे यूं हुआ, हे मनुष्य के पुत्र, तू एक विद्रोही घराने के बीच रहता है। उनके पास देखने को आंखें हैं पर वे देखते नहीं, सुनने को कान हैं पर वे सुनते नहीं, क्योंकि वे एक विद्रोही घराना है। यहेजकेल 12:1-2।
यहेजकेल का 12वां अध्याय 144,000 की मुहरबंदी के समय की पहचान करता है, और ऐसा करते हुए वो इफ्राम के पियक्कड़ों द्वारा प्रस्तुत नकली पश्चात वर्षा संदेश को जिक्र करता है, जो यरूशलेम की प्रजा पर शासन करते हैं। वे पियक्कड़ जो मुहरबंद पुस्तक को पढ़ नहीं सकते, उनका नकली पश्चात वर्षा संदेश परमेश्वर के वचन के भविष्य सूचक दर्शनों को बहुत दूर भविष्य में टाल देने पर आधारित है।
आयत 3-15 तक यहेजकेल को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाता है कि परमेश्वर की प्रजा बाबुल की बंधुआई में जाती है। बाबुल की बंधुआई शीघ्र आने वाले रविवार के कानून का प्रतीक है, और फिर आयत 16-20 तक वो उस अकाल का उल्लेख करता है जो नगरों के विनाश के साथ आता है, जिसकी शुरुआत महान भूकंप के समय होती है, जो कि शीघ्र आने वाला रविवार का कानून है। उस संकट काल में ग्रामीण जीवन के लाभ वहां प्रस्तुत किए गए हैं, और फिर आयत 21-28 तक वो खंड मिलता है जिसे मिलराइट इतिहास में वर्तमान सत्य के रूप में पहचाना गया था। ये खंड पुस्तक महान संघर्ष में मिलराइट इतिहास के वर्णन में शब्दशः उद्धृत है।
और यहोवा का वचन मेरे पास आया, मनुष्य के संतान, इज़राइल के देश में जो ये कहावत तुम्हारे पार छलित है वो क्या है, कि दिन लंबे होते जाते हैं और हर एक दर्शन निष्फल होता है। इसलिए उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं इस कहावत का अंत कर दूंगा और वे इसे इज़राइल में फिर कभी कहावत के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। पर उनसे कहना, दिन निकट आ गए हैं और हर एक दर्शन की सिद्धि, क्योंकि इज़राइल के घराने में अब न कोई व्यर्थ दर्शन होगा और न चापलूसी से की जाने वाली भविष्यवाणी, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं बोलूँगा और जो वचन मैं बोलूँगा वो पूरा होगा, वो अब और टाला नहीं जाएगा, क्योंकि हे विद्रोही घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और उसे पूरा करूँगा, ये प्रभु यहोवा की वाणी है। फिर यहोवा का वचन मेरे पास आया कि मनुष्य के संतान, देख, इज़राइल के घराने के लोग कहते हैं, जो दर्शन वो देखता है वो बहुत दिनों के लिए है, और वो दूर के समयों के विषय में भविष्यवाणी करता है। इसलिए उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मेरे किसी भी वचन को अब और टाला नहीं जाएगा, पर जो वचन मैं बोल चुका हूँ वही किया जाएगा, ये प्रभु यहोवा की वाणी है। यहेजकेल 12:21-28।
144,000 की मुहरबंदी के समय प्रस्तुत किया जाने वाला नकली अंतिम वर्षा का संदेश ये दावा करता है, दिन लंबे कर दिए गए हैं और हर दर्शन निष्फल हो जाता है। आखिरकार क्या मूसा, एलिया, यहेजकेल, यशाया और यूहन्ना द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए वे दूत 18 जुलाई 2020 की अपनी भविष्यवाणी में असफल नहीं हुए? उस समय लाओदिकियाई एडवेंटिस्ट का संदेश ये है, जो दर्शन वो देखता है वो बहुत दिनों के लिए है, और वो दूर के समयों की भविष्यवाणी करता है। उस इतिहास में न केवल हर दर्शन पूरा होगा, बल्कि दूत को आधुनिक इज़राइल के खोए हुए घराने से कहना है, प्रभु यहोवा यों कहता है, मैं लाओदिकियाई एडवेंटिज्म की उस नकली कहावत को समाप्त कर दूंगा। उन्हें कहो, दिन निकट है और हर दर्शन की पूर्ति, अब मेरे किसी वचन में विलंब न होगा, परंतु जो वचन मैंने कहा है वो किया जाएगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। लाओदिकिया का संदेश ये अपेक्षा करता है कि संदेश ये बताए कि वे दिन निकट हैं जब हर दर्शन का प्रभाव घटित होना है, और वे दिन 144,000 की मुहरबंदी के दिन हैं। इस खंड में जो मुख्य बात न छूटे वो ये है कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि उन दिनों में जो मुहरबंदी की समय अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह लाओदिकियाई एडवेंटिज्म के व्यर्थ दर्शन, उनके चापलूसीपूर्ण भविष्य कथन और उनकी नकली कहावत को समाप्त कर देगा। परमेश्वर उनके नकली अंतिम वर्षा संदेश को शीघ्र आने वाले रविवार के कानून से पहले ही समाप्त कर देता है, क्योंकि वो उसे उन्हीं दिनों में समाप्त करता है जिनकी वो बात कर रहा है।
वो सच्चे अंतिम वर्षा संदेश की पुष्टि करके और उन लोगों को ऊपर उठाकर जिन्हें शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय पताका बनने के लिए चुना गया है, इसे समाप्त कर देता है। वे चुने हुए लोग भूकंप से पहले मुहरबंद किए जाते हैं। जिस दूसरे तरीके से वो नकली अंतिम वर्षा के संदेश की निरर्थक कहावत को समाप्त करता है, वो है परमेश्वर के अप्रत्याशित और बढ़ते हुए न्यायों का आगमन, जो अंधकार की संतान के लिए अत्यंत चकित कर देने वाले होंगे, परंतु प्रकाश की संतान, जिनकी भविष्यवाणी करते आए होंगे, उसी संदेश का हिस्सा है। जिस इतिहास में हम अब प्रवेश कर रहे हैं, इसका सामना परमेश्वर के न्याय से होने वाला है। वे न्याय परमेश्वर के वचन में बार बार दर्शाए गए हैं, और मुहरबंदी का वो काल जो 11 सितंबर 2001 को प्रारंभ हुआ, वही बिंदु है जहां हर दर्शन परमेश्वर के न्यायों के दर्शनों सहित आकर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कभी निष्फल नहीं होता। पिछले लेखों में हमने प्रदर्शित किया कि दानियल की पुस्तक के पहले 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 3 स्वर्गदूतों के संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2रा अध्याय 2रे स्वर्गदूत का संदेश है, और इसलिए वो मुहरबंदी की अवधि की 2री परीक्षा का एक चित्रण है। पहली परीक्षा 1ला अध्याय था, और वो ये आहार संबंधी परीक्षा थी कि कोई व्यक्ति स्वर्गीय भोजन चुनेगा या बाबुल का भोजन। 2रा अध्याय नबूकदनेस्सर के पशुओं की प्रतिमा के स्वप्न में निहित छिपे हुए सत्य द्वारा दर्शाया गया था, जो कि राज्य है। दानियल अध्याय 2 144,000 की मुहरबंदी के समय होने वाली पशु की प्रतिमा की परीक्षा को दर्शाता है, और उसमें एक छिपी हुई समझ निहित है, क्योंकि नबूकदनेस्सर उस स्वप्न को याद नहीं कर सका। ये एक ऐसे छिपे हुए सत्य का प्रतिनिधित्व करता है जो 144,000 के इतिहास में मुहर खुलने पर प्रकट होता है, और उस प्रतिमा में दर्शाए गए बाइबल भविष्यवाणी के राज्यों के संबंध में भी एक छिपे हुए सत्य का ये दानियल और 3 वीरों के लिए तथा बाबुली आहार खाने वाले कसदी ज्ञानी पुरुषों के लिए भी जीवन मरण की परीक्षा था। एलन वाइट को दिखाया गया था कि पशु की प्रतिमा अनुग्रह काल समाप्त होने से पहले, क्योंकि यह परमेश्वर के लोगों के लिए वो महान परीक्षा है जिसके द्वारा उनकी शाश्वत नियति तय होगी, बनाई जाएगी। नबूकदनेस्सर का गुप्त स्वप्न उस परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इन दिनों जब हर दर्शन का प्रभाव अब और विलंबित नहीं किया जाता, प्रतिमा की जो छिपी सच्चाई प्रकट हुई है वो ये है कि यीशु अल्फा और ओमेगा के रूप में बाइबल की भविष्यवाणी में राज्यों के बारे में प्रथम और अंतिम संदर्भों में ये बताते हैं कि 8वां पशु 7 में से है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 का 8वां पशु जो 7ों में से है, वो पापाई शक्ति है जिसे पृथ्वी के सिंहासन पर फिर से स्थापित किया गया है, और जो गहरा छिपा हुआ रहस्य प्रकट हुआ यह है कि जैसे संयुक्त राज्य इस राष्ट्र में उस पशु की प्रतिमा बनाता है, वैसे ही वो भी 7ों में से 8वें का प्रतिनिधित्व करेगा। 1979 में आरंभ हुए अंतकाल के बाद से 6ठा राष्ट्रपति, जो वो धनी राष्ट्रपति है जिसने अजगर के समूचे राज्य को भड़का दिया, को 2020 में प्रगतिशील वोक उदार वैश्वीवादियों के हाथों घातक राजनीतिक घाव लगा, जब प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के नास्तिक पशु ने सड़कों पर रिपब्लिकन सिंह का वध कर दिया। उसी समय 3रे स्वाहराग बैंक का आंदोलन 18 जुलाई 1820 को प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के नास्तिक पशु के हाथों घातक चोट से घायल हुआ। वह आंदोलन लाओदीकियाई सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों से बना था, और 2023 में उस आंदोलन को 3रे स्वर्गदूत का फिलाडेल्फियाई आंदोलन के रूप में उत्थापित किया गया। दोनों सिंह 2023 में मारे गए, और 3.5 प्रतीकात्मक दिनों के बाद दोनों सिंह फिर खड़े होते हैं। पशु की राजनीतिक प्रतिमा का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में कलीसिया और राज्य के संयोजन से होता है, और अंतिम दिनों में वे जिसकी प्रतिमा बनाते हैं वो 8वां पशु है जो 7 में से है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रतिमा पशु गठित होगा, तब उसमें रोम के 8वें पशु की वही भविष्यवाणी संबंधी विशेषता होगी। जब पशी की प्रतिमा की परीक्षा सच्चे प्रोटेस्टेंटवाद के सींग पर पूरी हो जाएगी, तब जो लोग पृथ्वी के पशु के दोनों सींगों में पशु की प्रतिमा के निर्माण से जुड़े भविष्य सूचक सत्यों को पहचानते हैं, वे मसीह की प्रतिमा के साथ सदा के लिए मुहरबंद किए जाएंगे। जिन मूर्ख कुमारियों ने उस निरर्थक और लुभावना दर्शन को स्वीकार कर लिया है, वे सदा के लिए पशु की प्रतिमा बना चुकी होंगी।
यही वो दृश्य था जो भविष्यवक्ता यहेजकेल ने देखा, जब उनकी विस्मित दृष्टि के सामने ऐसे प्रतीक चित्रित हुए जो पृथ्वी के शासकों के मामलों पर शासन करने वाली एक शक्ति को दर्शाते थे। परस्पर एक दूसरे को काटते हुए चक्र चार जीवित प्राणियों द्वारा संचालित थे। इन सबके बहुत ऊपर एक सिंहासन की समानता थी जो देखने में नीलम के समान थी, और सिंहासन की उस समानता के ऊपर बैठा हुआ एक ऐसा रूप था मानो मनुष्य का रूप हो। यहेजकेल 1:26-RSV।
पहिए इतने जटिल थे कि पहली दृष्टि में वे अव्यवस्थित प्रतीत होते थे, फिर भी वे पूर्ण सामंजस्य में गति कर रहे थे। स्वर्गीय प्राणी उन पहियों को गति दे रहे थे। मानवीय घटनाओं का जटिल खेल दैवी नियंत्रण के अधीन है। राष्ट्रों के संघर्ष और कोलाहल के बीच भी जो करूबों के ऊपर विराजमान है, वही इस पृथ्वी के कार्यकलापों का मार्गदर्शन करता रहता है। अपनी महान योजना में परमेश्वर ने हर राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक स्थान निर्धारित किया है। आज मनुष्य और राष्ट्र अपनी ही पसंद से अपनी नियति का निर्णय कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सब पर सर्वोच्च अधिकार से शासन कर रहा है।
महान मैं हूँ ने अपने वचन में जो भविष्यवाणियां दी हैं, वे हमें बताती हैं कि युगों की यात्रा में हम कहाँ हैं। अब तक भविष्यवाणी ने जो कुछ भी पहले से बता दिया है, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो चुका है, और जो कुछ अभी आना बाकी है, वो अपने क्रम में पूरा होगा।
समय के चिन्ह ये घोषित करते हैं कि हम महान और गंभीर घटनाओं की दहलीज पर खड़े हैं। हमारी दुनिया में सब कुछ उथल पुथल में है। उद्धारकर्ता ने अपने आगमन से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की। तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के विषय में सुनोगे। एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठेगा, और जगह जगह अकाल, महामारियां और भूकंप होंगे। मत्ती 24:6-7। शासक और राजनेता पहचानते हैं कि कुछ महान और निर्णायक घटित होने को है, कि संसार एक अत्यंत भीषण संकट की कगार पर है।
बाइबल और केवल बाइबल ही उन घटनाओं का सही दृष्टिकोण देती है जो पहले से ही अपनी छाया डाल रही हैं। उनके निकट आने की आहट से पृथ्वी कांप उठती है, और भय के कारण मनुष्यों के हृदय बैठ जाते हैं। देखो, प्रभु पृथ्वी को उजाड़ देगा और उसे वीरान कर देगा, और वो उसकी सतह को मरोड़ेगा और उसके निवासियों को तितर बितर कर देगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्थाओं का अतिक्रमण किया है, विधियों का उल्लंघन किया है, अनंत वाचा को तोड़ा है। इसलिए शाप पृथ्वी को निगल रहा है, और उसके निवासी अपने अपराध के कारण दुख भोगते हैं। यशायाह 24:1-5-6-SRSV।
हाय, क्योंकि वो दिन महान है, उसके समान कोई नहीं। वो तो याकूब के संकट का समय है, परंतु वो उसमें से बचाया जाएगा। यिर्मयाह 30:7।
क्योंकि तूने प्रभु जो मेरा शरण स्थान है, अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे ऊपर न पड़ेगी, न कोई महामारी तेरे डेरे के निकट आएगी। भजन संहिता 51:10-10।
परमेश्वर अपनी कलीसिया का उसके सबसे बड़े संकट के समय साथ नहीं छोड़ेगा। उसने छुटकारा देने का वचन दिया है। उसके राज्य के सिद्धांतों का सम्मान सूर्य के नीचे रहने वाले सभी लोग करेंगे। ऐतिहासिक झलकियां 237-277।
मानवीय घटनाओं का जटिल ताना बाना का प्रतिनिधित्व मुद्रांकन के समय यहेजकेल के परम पवित्र स्थान के दर्शन में एक दूसरे को काटते हुए चक्कों द्वारा किया गया था। वे घटनाएं दिव्य नियंत्रण में हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन के समस्त दर्शनों की पूर्ति हैं जो मुद्रांकन के समय अपनी अंतिम और सिद्ध परिणति पाते हैं। एक ध्वनि है जो एक प्रचंड संकट की पहचान कराती है, जिसका विश्व अनुभव करने के कगार पर है। वही ध्वनि पृथ्वी को कंपा देती है और भय से मनुष्यों के हृदय बैठ जाते हैं। पृथ्वी का हिलना और भय से मनुष्यों के हृदयों का बैठ जाना, ये दोनों सातवीं और अंतिम तुरही की ध्वनि के प्रतीक हैं, जो तीसरी विपत्ति है। तीसरी विपत्ति के इस्लाम द्वारा राष्ट्रों को क्रोधित किया जाना प्रसव पीड़ा से गुजरती स्त्री के समान है, जो एक बढ़ते और लगातार तीव्र होते संकट का संकेत देता है। वो बढ़ता हुआ संकट 11 सितंबर 2001 को शुरू हुआ और 7 अक्टूबर 2023 को अगली अत्यंत तीव्र प्रसव पीड़ा आ पड़ी। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता, अगली प्रसव पीड़ा बहुत शीघ्र आने वाली है और वो और भी विनाशकारी होगी। क्या आप अभी भी किसी शहर में रह रहे हैं?
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
भविष्यद्वक्ता को भइये के भीतर पहिया, उनके साथ चूगड़े हुए जीवित प्राणियों का स्वरूप, ये सब जटिल और समझ से परे प्रतीत होता था। परंतु पहियों के बीच अनंत ज्ञान का हाथ दिखाई देता है और उसके कार्य का परिणाम पूर्ण व्यवस्था है। परमेश्वर के हाथ द्वारा संचालित हर पहिया अन्य हर पहिए के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करता है। मुझे दिखाया गया है कि मानवीय माध्यम अत्यधिक शक्ति की तलाश में प्रवृत्त होते हैं और कार्य को स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। वे प्रभु परमेश्वर महान कर्ता को अपनी विधियों और योजनाओं से बहुत हद तक बाहर रख देते हैं और कार्य की उन्नति के संबंध में हर बात उसी के भरोसे नहीं छोड़ते। किसी को भी क्षण भर के लिए ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वो उन बातों को संभाल सकता है जो महान मैं हूं की हैं। परमेश्वर अपनी अपुना व्यवस्था में एक मार्ग तैयार कर रहे हैं ताकि कार्य मानवीय माध्यमों द्वारा किया जा सके। तब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य स्थान पर खड़ा रहे, इस समय के लिए अपना भाग निभाए और ये जाने कि परमेश्वर उसका शिक्षक है। टेस्टिमोनीज खंड 9 थू 59।